आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। एंथनी एल्बनीजी ने कहा लेबर के बहुमत पाने पर भी वे नई क्रॉस बेंच के साथ मिलकर करेंगे देश हित में काम। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी क्वाड वार्ता के लिए पहुंचे जापान। और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेंच ओपन में की चौंकाने वाली शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का कहना है कि लेबर कैनबरा में सबको साथ लेकर और सबके साथ मिलकर काम करना चाहता है, चाहे फिर उन्हें बहुमत मिले या नहीं। एंथनी एल्बनीजी अब टोक्यो में क्वाड समिट में शिरकत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकल गए हैं। टोक्यो में उनकी मुलाकात अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एल्बनीजी ने कहा कि वे राजनेताओं के संसद में व्यवहार के तरीके को बदलने के लिए उत्सुक हैं। उनका कहना रहा कि लेबर को उम्मीद है कि वे लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्वतंत्र उम्मीदवारों से पहले ही संसद के कुछ नियम तय करने के लिए बात कर ली है।
I have received and had discussions with the existing members of the crossbench and received confirmation from Rebecca Sharkey, Bob Catter, Andrew Wilkie, Helen Haynes and Zali Steggall that they would not support any no confidence motions against the government and that they would also, of course, secure supply.
पूर्व प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस ने उन सभी अटकलों का खंडन किया है जहां कहा जा रहा था कि नेशनल्स के चलते शनिवार को हुए चुनावों में लिबरल्स को हार का मुंह देखना पड़ा है। श्री जॉयस का कहना है कि उनकी पार्टी ने अपनी सारी सीटों को फिर सुरक्षित किया है। श्री जॉयस का कहना है कि विपक्ष के तौर पर वे नई सरकार से जवाबदारी मांगेंगे। साथ ही उन्होंने लेबर के बहुमत ना पाने की सूरत में ग्रीन्स और लिबरल्स के गठबंधन के खिलाफ भी चेतावनी दी। पर ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी इस हार का अवलोकन करेगी, उनका कहना था कि ये काम लिबरल्स का है।
Well, I'm not going to talk on behalf of the Liberal Party because that is for them, and I'm going to give them the space and the dignity and the respect for them to have their own discussions. We will reflect on the fact that we won every seat that we held. Three of those were seats that had retiring members. We picked up another Senate.
क्वींसलैंड में इन्फ्लुएंजा के मामलों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी होने के बाद सभी निवासियों को मुफ्त फ्लू रोधी टीके दिए जाएंगे। प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे का कहना है कि 141 लोग फिलहाल इन्फ्लुएंजा ए की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि मामलों में अचानक तेज बढ़त देखने को मिली है, जहां पिछले हफ्ते के 1,848 संक्रमण मामलों के मुकाबले इस हफ्ते दोगुने से भी ज्यादा 4,282 फ्लू मामले दर्ज किए गए हैं। प्रीमियर ने पुष्टि की है कि सभी जीपी और फार्मेसी कल से लेकर 30 जून तक मुफ्त फ्लू रोधी टीके मुहैया कराएंगे।
Now why are we doing this? Because we are seeing the impacts on our hospitals, and if we don't get a vaccinated community with the flu vaccine, we are going to see escalating numbers in our hospitals. So we need to do a preemptive strike now. We need to make sure we have this preventative measure in place.
एस्ट के क्षेत्र के नेता नई एल्बनीजी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वे कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर कदम उठाएगी। सेवा प्रदाता कैथोलिक हेल्थ ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि एस्ट केयर व्यवस्थाओं में संक्रमण के रोकथाम के लिए बेहतर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, जिसे कॉमनवेल्थ तब तक समर्थित नहीं करता जब तक कि प्रकोप न हो। ऑस्ट्रेलियन एस्ट केयर कोलैबोरेशन चाहता है कि नए प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस उद्योग में सुधार को प्राथमिकता दें। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एस्ट केयर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की मांग न केवल घरेलू स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। टेड्रोस एडनम गेब्रियोसिस का कहना है कि ओमिक्रॉन लहर के चरम पर पहुंचने के बाद संक्रमण के मामलों में कमी देखी तो गई है, लेकिन सरकारों को अभी लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। श्री गैब्रियोसिस का कहना है कि जांच और जेनेटिक सीक्वेंसिंग में कमी का अर्थ है कि लोग इस वायरस के खुद को पलट लेने की तेजी को अनदेखा कर रहे हैं।
In many countries, all restrictions have been lifted and life looks much like it did before the pandemic. So, is it over? No, it's most certainly not over. I know that's not the message you want to hear, and it's definitely not the message I want to deliver.
विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि दुनिया में मंकी पॉक्स के मामलों में संख्या बढ़ सकती है। श्री गैब्रियोसिस का कहना है कि वे आने वाले दिनों में बताएंगे कि इस बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है। दूसरी ओर ऑक्सफैम के हवाले से आई एक रिपोर्ट में विश्व भर में असमानता की हद सामने आई है। ऑक्सफैम का कहना है कि महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नए अरबपति बने और इसी अवधि में लगभग 10 लाख लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संपत्ति में कोरोना काल के शुरुआती 2 साल में पिछले 23 साल के कुल इजाफे से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब विश्व के अरबपतियों की कुल संपत्ति वैश्विक GDP के लगभग 14% के बराबर है। ऑक्सफैम की मुख्य सचिव लिन मॉर्गन ने SBS न्यूज से कहा कि अत्यधिक धनवान लोग अत्यधिक गरीब श्रमिकों के दर्द पर फल फूल रहे हैं।
The pandemic causes poverty, growth, terrible inequality. So we have this unfortunate situation where we're seeing more people descend into abject poverty at the same time as we're seeing this growth in billionaires. The key, of course, is we need to find a way, and the obvious way is taxation, to try and ensure that these windfall benefits come back into the communities that need them.
SBS आज से अपना 6th फ्री टू एयर चैनल जारी कर रहा है। SBS वर्ल्ड वॉच पर आप 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय समाचार कार्यक्रम देख सुन सकते हैं, और वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में। ये चैनल 35 और SBS ऑन डिमांड पर उपलब्ध होगा। और अब खबरें भारत से। क्वाड शिखर वार्ता के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह होटल न्यू ओटानी के बाहर स्वागत के लिए उनका इंतजार कर रहे बच्चों से खास बातचीत की। इस दौरान पीएम एक बच्चे रित्सु की कोबायाशी के हिंदी भाषा में बोलने पर काफी प्रभावित हुए। टोक्यो में उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि टोक्यो पहुंचा। इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, साथ ही क्वाड नेताओं से मुलाकात करेंगे। जापानी व्यापार जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत होगी। टोक्यो में होने वाली ये बैठक क्वाड नेताओं की 4th मीटिंग होगी। इसमें नेता क्वाड पहल और कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे और भविष्य के सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी तय करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का ये प्रधानमंत्री के तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात भी होगी। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला तमिलनाडु जबकि दूसरा मामला तेलंगाना में पाया गया है। भारतीय सार्स CoV-2 अनुक्रमण संघ यानी INSACOG ने रविवार को एक बयान में ये कहा कि तमिलनाडु की एक महिला वायरस के उपस्वरूप BA.4 से संक्रमित पाई गई है। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2022 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 9% कम है और पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 46 लोगों ने कोविड के चलते अपनी जान भी गंवाई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कुल सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 के नीचे आ गई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.17 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस को अपनी बेहद चौंकाने वाली फ्रेंच ओपन की शुरुआत में एक तारनहार मिल गया है। कोर्ट पर उतरने वाले पहले चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस ओ'कॉनल, एलेक्सी पोपरिन, एस्ट्रा शर्मा और थानासी कोकिनाकिस हार का सामना कर चुके हैं, पर जेसन कुबलर ने ऑस्ट्रेलियाई साख बचाते हुए तीन बेहद मुश्किल चरणों को पार किया और अब मुख्य ड्रॉ तक पहुंच आ गए हैं। वे शातिर अमरीकी खिलाड़ी डेनिस कुडला को हराकर 11 सशक्त डाउन अंडर दल के पहले प्रतिभागी हैं जो इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं। और अब अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका बताई जा रही है। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में सोमवार को बादल घिरे रहेंगे, यहां अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल छाए रहेंगे, यहां अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल बरसात बनी रहेगी, अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी कल बारिश का अनुमान है, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम बना रहेगा, दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।